Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
हम लोग बताए ना, वो कहते ना सरदार जी के दो बच्चे थे, दोनों अमेरिका चले गए. और सरदार जी के यहां 20 किले जमीन, बगिया कोठी. अब सरदार जी से किसी ने पूछा, गिरीश भाई जाके पूछे, क्या हालचाल है सरदार जी? तो क्या कहे महाराज, एक बच्चा तो कम से कम मूर्ख निकल जाता, कम से कम घर में रहता, माँ बाप की सेवा करता, इस विरासत को संभालता. मान लो अमरीका में उसने बहुत बड़ी कोठी बनवा लिया, लेकिन अमरीका में अब मुंबई में करोड़पति की कोई इज्जत है क्या? मेरे बता दो. यही करोड़पति यदि किसी गांव में होवे तो कम से कम 10 गांव में उसकी एक प्रतिष्ठा रहेगी. अरे बाबू जी आ रहे हैं नहीं बोलेंगे. और करोड़पति की यहां तो एक कमरा है, वो बता रही थी, हमारे पास एक कमरा है 1 BHK का, वो भी 50 लाख का है. बताओ बताओ, तो यहां कोई कीमत है क्या? कम से कम गांव में एक बच्चा मूर्ख बन के रहता, कम से कम माँ बाप की क्या करता, सेवा करता. तो मूर्ख बच्चे की भी उतनी ही कीमत है जितनी कीमत किसकी है, विद्वान की कीमत है. इसलिए ये ना समझना कि ये नीच है उच्च है. इस परमात्मा ने सृष्टि में सबको इतनी सत्ता दी हुई है. एक कौवा भी कम से कम कितनी गंदगियां लोग फेंक देते, मैंने देखा है, उल्टा सीधा खा पी के फेंक देते हैं. कौवा बेचारा सबको क्या करता है, एक आप लोग कर्मचारी रखते हो, इन परमात्मा को कौन है, सफाई कर्मचारी. चील, कौवे, गिद्ध, ये सब उसको क्या करते हैं, 2-4 घंटे में सब निपटा के खाली कर देते हैं. आप तो यहां से ले जाओगे, वहां रखोगे, वहां गंदगी फैलाओगे, फिर वहां से हटाओगे, तीसरी जगह गंदगी फैलाओगे. लेकिन कौवा उसको ऐसा डिस्पोजल करता है, उसको खाने के बाद कोई गंदगी नहीं निकलती, उसके उसमें मल में इतनी गंदगी नहीं निकलेगी. तो बताओ, परमात्मा के सफाई कर्मचारी अच्छे हैं बुरे हैं, बताओ? आपके सफाई कर्मचारियों से उनके सफाई कर्मचारी अच्छे हैं. चले भाई, निश्चितार्थम. तो उपनिषदों में नाम, रूप, जाति, गुण भी अच्छा, सत्वगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है. अरे संसार में सब गुणों की कीमत है. ये संसारी लोग माने जाते हैं रजोगुणी, काम धाम दौड़ भाग करना. बाबा लोग क्या मान जाते हैं, सत्वगुणी, शांत बैठे हैं, ज्यादा दौड़ भाग नहीं है, है नहीं. तमोगुणी है, कुछ उल्टा सीधा काम कर देवे. तो अब उल्टा सीधा काम करेगा तभी तो रजोगुणी जाकर उसको सुधारेगा. यदि उल्टा सीधा कोई काम ही न करेगा तो रजोगुणी क्या करेगा वहां. इसलिए हर व्यक्ति की संसार में क्या है, कीमत है. इसलिए उसकी भी परवाह मत करना कि तुम घटिया है, इंसान है, ये है. अच्छा, अगला नाम, रूप, जाति, गुण और क्रिया. उन गुणों से ही क्या उत्पन्न होते हैं, गुण तो कारण है, क्रिया क्या है, कार्य है. तो इन गुणों से जो कार्य उत्पन्न होता है, उस कार्य में भी बहुत ज्यादा हमें दृष्टि देनी नहीं चाहिए. इसलिए हमें दृष्टि किसमें देनी चाहिए, इनके भीतर जो सत्ता देने वाला है परमात्मा ब्रह्म, जिसकी सत्ता से सारे गुणों की सत्ता दिख रही है, सारी क्रियाएं दिख रही है. अभी ये भी श्लोक अभी आपने पढ़ा है, जिसकी एकदम अंतिम श्लोक है, अंतिम नहीं, जहां से मुझे पढ़ाना है. सर्वेन्द्री गुणाभासम, सर्वेन्द्री विवर्जितम, असक्तम सर्वभूत चैव निर्गुणम गुण भोक्तृच. मतलब सारे इंद्रियों जिसकी सत्ता से प्रतिभाषित हो रही हैं, जिनकी सत्ता से उनका बोध हो रहा है, जिनकी सत्ता से सारे विषयों को जान रही हैं, उस ब्रह्म को जानना चाहिए. ते धन्या भूई परमार्थ निश्चितेहा. इस संसार में वही व्यक्ति धन्य भागी है जिसने परमात्मा ने जो परम प्रयोजन मोक्ष है, उसी को ही जीवन में निश्चय प्राप्त करना है, यही धारणा बना लिया है, यही चेष्टा कर लिया है. एक जीवन का लक्ष्य क्या है, अपने स्वरूप को जानना ही जिसके जीवन का लक्ष्य हो गया है, उसका ही जन्म लेना इस संसार में क्या है, धन्य है. और हम सब क्या हो गए बाकी, कहते शेषास्तु भ्रम निलये परिभ्रमंती, बाकी बचे हुए जितने भी बंदे हैं भ्रम निलये, इस भ्रम रूपी वो होता ना एक झूला होता है घूमने वाला है, तो भ्रम निलये माने भ्रम रूपी घर में परिभ्रमंती घूमने वाले हैं, आने जाने वाले हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इसी माने जाने वाले हैं। क्योंकि भाई यहां से भी बहुत धर्म किया, अधर्म करके इंद्र भी बन जाओगे तो छिड़े पुण्य मृत्यु लोके, फिर कर्म करो, फिर वहां जाओ यहां जाओ, ये करो वो करो, भगवान मालिक है, ये 84 का चक्कर छूटने वाला है ही नहीं। इसलिए बहुत बढ़िया वक्त मिला हुआ है, मनुष्य जन्म मिला हुआ है, परमात्मा ने इसी बुद्धि भी थोड़ी दे ही दी है जो प्रेमपुरी तक पहुंच गए हैं। यदि यहां बुद्धि न होती तो वहां पहुंचे होते कहां पे, एक गिरगांव चौपाटी के बीच में शाम को बैठते, लेकिन यहां ये बुद्धि बनी हुई है आपकी कम से कम। लेकिन इस बुद्धि का पूरा उपयोग कर लो। सच बताऊं कभी कभी तो मैं आपके भाग्य की सराहना करता हूं, आप कुछ हमसे ज्यादा मात्रा में भाग्यशाली हो। आप कहो क्यों? देखो भाई, जिस तत्व को पाने के लिए हम लोगों ने माँ बाप भाई बंधु घर परिवार मित्र संसार के हर सुखों को क्या किया, छोड़ा। आपको लगता है इस कपड़े को पहन करके बाहर निकलो, देखो आप कभी कभी निकलना, ये तो बड़े बड़े लोगों को नहीं मिलता है, क्योंकि तो गाड़ी बंगले में दो चार लोग चल रहे हैं उनको कोई नहीं पता। हम लोग कितनी उपेक्षाएं सहनी पड़ती हैं, कितने लोग कितने कितने कमेंट कसते हैं, कितने लोग देख करके कितनी हंसी उड़ाते हैं, ये हम लोग भोगते हैं, सच बता रहा। ये तो बहुत बड़ा आदमी हो तो उसको कोई नहीं बोलता है, लेकिन हम लोग जब निकलते हैं ना कहीं घूमने के लिए भी निकलते हैं तो इसे लोग देख देख करके हंसी उड़ाते हैं, इसे उपेक्षा करते हैं, जैसे पता नहीं क्या हो गए हम उनके लिए, क्या उनको बोल रहे हैं, सच बता रहा हूं। ऐसी खिल्लियां उगाते हैं। लेकिन आप लोग कैसे भी रहो, कैसे भी पहनो, कहीं भी घूमो, कुछ भी करो, कोई फर्क पड़ता है क्या? लेकिन एक तत्व जिसको पाने के लिए हमने सब कुछ छोड़ा, आपको वह तत्व क्या मिल रहा है? सहज बड़ी आसानी से उपलब्ध हो रहा है, नहीं हो रहा है? तो बता, भाग्यशाली आप हो नहीं हो? हमसे ज्यादा ही है भाई, ये तो मानना ही पड़ेगा आपको। लेकिन हाँ, बस भाग्य थोड़ा सा और बढ़ा लेना है। अभी जो निश्चित इच्छा बनी हुई ना, उस इच्छा को पेड़ बना लेना है। अंकुर फूटता तो है लेकिन फूट करके मुरझा जाता है। ये संसार की बयार, संसार की हवा इतनी तेज बहती है कि उसको पेड़ बनने देती नहीं। थोड़ा उसको रोप लो, थोड़ा उसको बाड़ लगा दो चारों तरफ, वो वृक्ष बन जाए। और यदि वृक्ष बन गया ना, तो फिर संसार में बड़ी बड़ी हाथियां भी उस वृक्ष से बांधोगे तो भी उस वृक्ष का बाल बांका होने वाला, कितना भी बड़ा तूफान आवे, चाहे हुदहुद आवे, चाहे अभी क्या रहा है नीलो पर आवे, यदि पेड़ मजबूत हो गया तो आपका बाल बांका, ऐसे संसार में कितना भी बड़ा दुख आवे फिर आपका कुछ भी बाल बांका होने वाला है नहीं। लेकिन जो आपके भीतर चेष्टा जगी हुई है, उस चेष्टा को क्या करना है, वृक्ष बनाना है। तो ये जानते हैं चार पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, और सबकी प्राप्ति का साधन भी अलग अलग है, भी जानते हैं है नहीं। धर्म की प्राप्ति का, काम की प्राप्ति, अर्थ की प्राप्ति का साधन अलग है, उद्योग करो है नहीं, सहनशील बनो, थोड़ा बहुत कपट भी करना पड़ेगा, बिना कपट के अर्थ मिलने वाला, अर्थस्य मूलम निकृति क्षमा च, अर्थ का मूल है निकृति और क्षमा। धर्मस्य नहीं, कामस्य, काम यदि चाहिए, भोग चाहिए तो रूपम वयो बपुश्च, काहे का, काम का मूल है रूपम वयो बपुश्च, यदि इसकी तरफ दौड़ रहे हो तो समझ लेना आपको क्या चाहिए, भोग चाहिए। कामस्य रूपम वयो बपुश्च, धर्मस्य याग आदि दयादमश्च, यदि धर्म चाहिए तो याग करो, दया करो, इंद्रियों को दमन करो तभी आप सेवा कर सकते हो। आजकल बच्चे यही नहीं कर पा रहे हैं। पहले आदमी 10,000 कमाता था, अपने पेट को काट के रखता था, थोड़ा बचाता था, तो उस बचे हुए धन में दूसरे की सेवा करता था। आज क्या हो गया है, 50 का 1,00,000 कमाता है और महीने के अंत तक खलास है। वो भी सोचता है पापा थोड़ा है क्या पैसा है, वो अपेक्षा करता है पिताजी सब भी मिल जाए। बताओ वो व्यक्ति दूसरे की सेवा क्या करेगा। इसलिए दूसरे की सेवा करने के लिए अपने सुखों को मारना पड़ता है तो दूसरे की सेवा कर सकता है। इसका नाम है दम, यदि धर्म करना चाहते हो तो। अब मोक्षस्य कहो महाराज मुझे मोक्ष चाहिए, तो सर्वो परमः क्रियाभ्य, हर प्रकार की बहिर्मुख क्रियाओं से थोड़ा थोड़ा क्या होते जाओ, उपराम होते जाओ, थोड़ा थोड़ा उनकी महत बुद्धि को कम करते जाओ, तो देखो आपको निश्चित उस लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। दूसरा श्लोक भाई, नहीं भागना पड़ेगा अंतिम दिन। 9 श्लोक पूरे करने हैं 3 दिन में। आदव व्याख्या तो आप लोग अपने आप है, अपने मन से कितना भी कर लोगे, इन 9 श्लोक में पूरा 9 जन्म भी लगा दोगे तो भी कम ही रहेगा, क्योंकि कहना तो बहुत आसान है, उसको कैसे कैसे चिंतन करके कैसे कैसे हटाना है ये जीतना पड़ेगा। आदव विजित्य विषयान मदमोह रागा द्वेषादि शत्रु गणमाहित योग राज्या ज्ञात्वामृतम सनभूत परात्म विद्या कांता सुखम बत गृहे विचरन्ति धन्या। आदव विजित्य, सबसे पहला काम आपको है, निकल गए ना आप लोगों ने निश्चय कर लिया ना, क्या निश्चय किया कि परमार्थ निश्चित है, परमार्थ ही हमारे जीवन का लक्ष्य है, ऐसा आपने निश्चय करके घर से निकल गए। घर से निकलना मतलब मन से निकले, और निकले तो क्या करना है, सबसे पहले आपको जीतना है। अरे भाई घर से कभी निकलो ना तो पीछे कोई खड़ा रहता है, तो आप इधर जाते हो तो मुड़ मुड़ के क्या करते हो, हाथ लाते हो, सामने एक्सीडेंट हो गया तो करते नहीं करते आप लोग, मुड़ मुड़ के देखना नहीं है, सबसे पहले हमें जीतना है, विजित्य जीतना है। किसको जीतना है, विषयान, यहां नहीं करें पत्नी पुत्र के लिए मुड़ मुड़ के न देखना, इन विषयों के प्रति। जो भाई आप खुद देखो, आप रास्ते में जा रहे थे, कोई वस्तु है सुंदर वस्तु झटके से निकल गई तो आपका गर्दन पूरा 180 डिग्री पीछे चला जाता, नहीं चला जाता है, बताओ आपके गर्दन को 180 डिग्री घुमाने वाला कौन था, उस विषय का आकर्षण ही तो था। यदि उस विषय का आकर्षण न होता तो आपकी गर्दन घूमती, वही कहने संसार में रहता हूं, संसार का तलबगार नहीं हूं, बाजार में निकला हूं लेकिन खरीदार नहीं हूं। बाजार में निकलो खरीदने नहीं है अपना, निकल गए, लेकिन संसार में रहो लेकिन संसार की किसी वस्तु की कोई इच्छा न करो। तो आदव विजित्य विषयान, सबसे पहले हमें किसको जीतना है, विषयों को जीतना है, यही सबसे बड़े शत्रु हैं। दूसरा दुनिया में कोई शत्रु नहीं है, सबसे बड़ा शत्रु कौन है, आपकी विषय ही शत्रु हैं। अब विषय नहीं, विषयों के प्रति जो आकर्षण है, विषय बेचारे क्या कर रहे हैं, ये फूल तो नहीं कर रहा ना कि हमें देखो, लेकिन विषयों के प्रति जो हमारा आकर्षण है, वो आकर्षण हमें बार बार एक गड्ढे से दूसरे गड्ढे में, दूसरे गड्ढे से तीसरे गड्ढे में गिराता रहता है। इसलिए यदि उस तत्व को जानना है, तत्व की तरफ बढ़ना है, तो पहले विषयों को क्या करना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा। इसके बाद क्या जीतना है, मद मोह राग द्वेष आदि शत्रु। मद जानते हैं, और विषयों को पाने के बाद ही मद होता है, घमंड, मेरे जैसा दूसरा कोई, अरे किस वस्तु को पाके घमंड कर ले हो, जिस वस्तु को पाके घमंड आज कर ले हो वह वस्तु कल तक किसी और की थी, वो भी उस पर इछला चुका है, आज तुम्हारी हो गई है और कल किसी और की हो जाएगी। इस आज बताओ, इस ये पृथ्वी, जिस पृथ्वी के छोटे से टुकड़े को पाकर के हम अभिमान करते हैं, ये जमीन किसकी है? मेरी है। अगर मेरी कहां से हो गई? वो जमीन तो वहीं की वहीं है। अब मेरी करने वाले कितने आए और कितने चले गए? तू भी यहां से जाने के लिए आया हुआ है, मेरी कर ले, अपना का है छोड़ने के लिए आया हुआ है। इसलिए भाई, अंग्रेज आए मेरी करके चले गए, मुसलमान आए मेरी करके चले गए, और उसके पहले भी कितने राजा महाराजा आए, सब मेरी मेरी करके चले गए। जमीन वहीं की है। हम लोग भी कहां कहां, मेरा आश्रम कितने आश्रम छोड़े, कहां कहां जा रहे हैं, ये मेरा कमरा, मेरे कमरे में कहां रहते हैं, क्या करते हैं, बताओ। ये झूठे अभिमानों को छोड़ो। आपका तो पत्नी मेरी है, बेटा मेरा है। एक ने सीधे कहा, आप कहते बेटा मेरा है, अरे मेरी बात तो सुनता नहीं, काहे को मेरा है, बताओ। आपका बेटा आपकी बात सुनता है क्या? तो काहे को आपका बेटा है, आप बताओ। जबरदस्ती आप झूठे अभिमान किए पड़े हो। पत्नी मेरी, अभी मायके से एक फोन आ जाए, तुम कहते रहो, रुकते रहो, रुकने वाले क्या? जो हम तो कहते हैं, शरीर भी आपका अपना है क्या? सच बताओ, शरीर भी मच्छर आगे काट के चला, मच्छर आता है काट के चला जाता है, खाला का घर समझते हैं सब लोग, जो चाहे जो इसके साथ खेलता है और चला जाता है। तो इसलिए भाई, मद करना छोड़ो। क्या मद? हम कहते हैं बड़ा रूप सुंदर है, अभी एक चेचक का दौरा आ जाए ना, चेचक सारा रूप क्या बन जाता है? कुरूप बन जाता है। इसलिए घमंड नहीं करना चाहिए किसी भी वस्तु को पा करके, चाहे धन हो, चाहे रूप हो, चाहे कर्म हो। हम कहते हैं आप कुछ करने वाले भी नहीं हो, ये नेचर आपसे करवा लेता है, आपको निमित्त बना दिया। ठीक, हम निमित्त बन जाए, लेकिन हम अभिमान क्यों करें कि मैंने किया? मोह, मद भी क्यों करते हैं? मोह के कारण, अज्ञान के कारण। जो वस्तु आपकी अपनी नहीं है, उस वस्तु को अपनी मान लेते हो, इसलिए क्या हो जाता है? मद, मोह के कारण मद है। आए मोह ही राग, मोह से ही जिसको अपना मानते उससे राग, और जिसको पराया मानते उससे द्वेष। तो ये जो शत्रुगण हैं, पूरा शत्रुओं का ये जमात है, जमात माने समूह है। कौन कौन? मद, मोह, राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि से सब लेना। आहित इन्होंने तुम्हारा अपना राज्य छीन लिया है। कौन सा? स्वराज्य। आपका अपना जो स्वरूप है, इन्होंने क्या किया है? छीन लिया है। आपके अंतःकरण पे इनका अधिकार हो गया है। किसका अधिकार? ये शत्रुओं का अधिकार हो गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? इन शत्रुओं को जीत करके अपने राज्य पर प्रतिष्ठित हो जाना है। अरे अपना शासन तो पाओ, फिर देश पे शासन कर लेना, लेकिन अपने आप पे पहले बैठ जाओ, अपने स्वरूप को प्राप्त कर लो। फिर वहां क्या होगा? ज्ञात्वा अमृतम, अपने आप को अमृत स्वरूप जान लोगे, जान करके। सम अनुभूत परात्म विद्या कांता सुखम, कहते कांता ओ परात्म विद्या, ब्रह्म विद्या रूपी जो कांता सुख है। कांता स्त्री के लिए पति, अब पति के लिए क्या बन जाएगी? कांता स्त्री बन जाएगा। ब्रह्म विद्या रूपी कांता, इसलिए कांता यहां नाम रखा है। कांता माने प्रेमी प्रेमिका नहीं, पति के लिए पत्नी, अब पत्नी के लिए क्या बन जाएगी? पति। ऐसे पत्नी का अथवा ऐसे पति का सुख भोग करते हुए कहते हैं गृहे विचरन्ति धन्याः, ये लोग इस संसार रूपी घर में आनंद से ही विचरण किया करते हैं, इनको संसार का फिर कोई दुख होता ही नहीं है। आई बात समझ में? लेकिन करना क्या है? इन विषयों को जीतना है पहले, मतलब विषयों का प्रभाव आपके ऊपर, नहीं तो आप पूरा मार्केट नहीं घूम पाओगे। पांच छह दुकान में जाओगे, जेब आपकी खाली हो जाएगी, फिर आगे के देखने से आप क्या हो जाओगे? वंचित हो जाओगे। नहीं, फिर भी महाराज जी घूम लेंगे, अब घूम लेंगे, कोई वस्तु वहां आपको आकर्षित दिख गई तो, अब फिर वो खरीद नहीं पाओगे, तो उसके खरीदने का भी क्या हो जाएगा? दुख हो जाएगा, इसलिए इन विषयों को जीतो। और जो विषय आपके पास मिले हुए हैं उस विषयों का घमंड मत करना, इस अज्ञान को छोड़ो, राग द्वेष काम क्रोध को छोड़ करके अपने राज्य को क्या करना, अपने राज्य को प्रतिष्ठित हो जाना और अमृत, अपने आप को अमृत स्वरूप जान करके उस परात्म विद्या रूपी, परात्म विद्या रूपी कांता के साथ रहते हुए संसार में व्यक्ति आनंद पूर्वक निवास करता है। अब फिर संसार में भागना नहीं पड़ेगा। अब भाग के कहां जाओगे, सही बताओ, कहीं है संसार? जहां भाग के जाओ जहां संसार न हो, मेरे बता दो। इसे संसार बाहर नहीं है, संसार क्या है, भीतर होता है। बाहर जाओगे वहां गुफा से राग हो जाएगा, बाहर जाओगे वहां पशु पक्षियों से राग हो जाएगा। कहीं देखे पक्षियां आ जाते हैं, एक माता है, आती है तोते खिलाती है, करती है, करती है, पक्षियों से भी राग हो जाता है। तो राग होने के लिए चाहे पक्षी हो चाहे आदमी हो, क्या फर्क पड़ता है, राग तो राग है। आगे चलो। त्यक्त्वा गृहे रति मधो, त्यक्त्वा गृहे रति मधो गति हेतु भूताम आत्मे क्षयो उपनिषद अर्थरसम पिबंतम बीत स्पृहा विषय भोग पदे विरक्ता धन्याश्चरन्ति बिजनेसु विरक्त संगा। त्यक्त्वा गृहे रतिम, बाप रे, घर को नहीं छोड़ना है कि घर को छोड़ना है? अरे घर को छोड़ना है दूसरे घर में बस जाओगे? तो गृहे रतिम, घर में जो आसक्ति है ना, उस आसक्ति को छोड़ना है। इसलिए बहुत भगवान भास्कर बोला गृहे रतिम, घर में जो आसक्ति ना, इसलिए मैं कहता हूं घर में रहो तो कैसे रहा करो, किरायेदार की तरह रहा करो। क्या रहो? किरायेदार। छोटी मोटी टूट फूट हो जाए, कहीं प्लास्टर उखड़ जाए तो कौन कराएगा? खुद कर देंगे। और ज्यादा टूट फूट होए तो मकान मालिक जाने, यही तो करोगे ना? ऐसे शरीर रूपी घर में, ये भी घर है ना, इस घर में छोटी मोटी टूट फूट होए ना तो डॉक्टर के यहां जाकर के क्या कर लेना, प्लास्टर वगैरह बंधवा लेना। और ज्यादा टूट फूट होए ना तो मकान मालिक जाने, इसका मकान मालिक जाने, ये पुराना घर छोड़ेंगे और बढ़िया नया घर में जब किराए पे रहना है। और ये कौन में बता दूं, जिसे अभी मैंने सुना कि बेंगलोर में एक साल का किराया एडवांस जमा करा देते हैं विद्यार्थियों से। आपके यहां तो एक महीने का ही होगा जमा, लेकिन बेंगलोर में 11 महीने का किराया एडवांस ले लेते हैं। एडवांस ले लिया तो आप 11 महीने तो उस कमरे में आप पक्का रह सकते हो। तो इस कर्म के लिए भी हमने कुछ किराया दिया हुआ है, मालूम है ना, कर्म। अरे भाई कर्म से हम भी रहे हैं, पहले विद्यार्थी जीवन में रहे एक जगह, मैं उनके बेटे को पढ़ाता था तो पढ़ाने के चक्कर में उनके घर में मैं रहता था, किराया नहीं देता था। तेरी मेहनत भी शुल्क होता है, तो जो हमने कर्म किए हैं वो उसकी पूंजी है। और जब तक किराया का एडवांस दिया हुआ है माई का लाल कोई निकाल नहीं सकता। और जिस दिन एडवांस समाप्त हो जाएगा उस दिन इस कमरे में रहने को मिलेगा नहीं। तो टूट फूट होवे छोटी मोटी तो उसको बनवा लेना, और बाकी टूट फूट होवे ज्यादा तो कौन जाने, मकान मालिक जाने, अपने छोड़ के दूसरे मकान में चले जाएंगे, काहे को चिंता कर ले। लेकिन रति कर लोगे तो, आसक्त कर लोगे तो महाराज जी बुराई क्या है, कहते अधो गति हेतु भूतां, अधो गति का हेतु बन जाओगे। नीचे हाय मकान मेरा छूट रहा है, क्या करूं, आंखें मरते वक्त इसे इसे देखी जाएंगी, कितना बढ़िया, इतना खून पसीना करके मैंने बनाया। और फिर जब छोड़ोगे तो हो सकता कहीं उस मकान की सुरक्षा के लिए कुत्ते बन के आना पड़ा, क्या पता है, वो करना पड़ेगा दूसरा कोई आ गया तो। इसलिए आसक्त मत होना। अरे एक मकान छूटेगा ना सजा बहुत बढ़िया दूसरा मकान मिलेगा, गारंटेड अच्छा मकान मिलेगा ना, चिंता करना। जहां भी मिलेगा नए पड़ोसी मिलेंगे, अच्छा है नहीं, मकान अपना मकान हो जाए तो निश्चित पड़ोसी है, और किराए का मकान हो तो हाँ, पड़ोसी भी बदलता रहता है। और दूसरा जहां नौकरी हो जाए वहां किराए का मकान ले लिया, चले गए, क्या फर्क पड़ता है, जहां का भोग हुए वहां डालेंगे। आत्म इच्छया उपनिषद अर्थ रसम पिबंतम, आत्म इच्छा से, आत्म इच्छा माने क्या हुआ, अपने आप को जानने की इच्छा से, आत्म जिज्ञासा से क्या करना है, उपनिषद अर्थ रसम पिबंतम, उपनिषद के अर्थ के रस का पान करते हुए बीत स्प्रिया, सारी चेष्टाओं से रहित हो जाओ, क्या संसार की चेष्टा करनी, सारी चेष्टाओं से रहित होकर के विषय भोग पदे विरक्ता, विषय के भोग के जो स्थान हैं, विषय भोग के पद हैं, स्थान हैं, उनसे विरक्त होकर के धन्यास चरंत बिजनेस विरक्त संगाह, ऐसे विरक्त संग जो असंग संग रहने वाले हैं, ऐसे महापुरुष धन्या हैं, ऐसे संसार में अकेले ही विचरण किया करते हैं, संसार में रहते हुए भी संसार से क्या है, असंग रहते हुए एक विजन की भांति रमण करते हैं। विजन माने, अब लोग हमसे भी कहते हैं महाराज बंबई हैं आप तो खूब घूमते होंगे, सही बताऊं कहां घूमना है, आप तो देखे ही देखे हैं, क्योंकि भाई इधर उधर जाओगे तो 10 लोग को देखोगे, 10 लोग कमेंट करते हैं तो सीधा सीधे दृष्टि जाना, सीधे जाना या कमरे के भीतर बाहर निकलने की इच्छा होती नहीं, तो बंबई में रहते हुए भी हम कहां हैं, बिजनेस एकांत में, ऐसे घर में रहते हुए व्यवहार करते हुए भी आप कहां रहना, अपने आप में रहना, अपने स्वरूप में रहना, यही सबसे बड़ा क्या है, बिजनेस। ऐसा जो पुरुष है वह धन्य है, धन्य है। अशेषास्तु, अब बाकी कौन है बोलो भाई, भ्रम निलय परिभ्रमंती, संसार रूपी घर में घूमने वाले हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शरणम। बाकी का चिंतन हम लोग कब करेंगे, कल करेंगे, जिसको ये श्लोक सुनने होंगे वो कल संडे है, क्योंकि मुंबई वाले संडे को क्या करते हैं, सोते हैं, तो भाई सोना है तो न आना, जगना है तो आ जाना। 9 श्लोकों में आपको ग्रंथ पढ़ा दिया जाएगा पूरा जीवन का सार। ओम शांति शांति शांति।